रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजमन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। कितना अच्छा क्रम रखा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति होने से मनुष्य भगत होता है और भगत होने से उसको भगवान मिलते हैं या भगवान की विशेष कृपा बरसती है, और भगवान की विशेष कृपा बरसती है तो संत महापुरुष मिलते हैं, सत्संग मिलता है। इससे ऊंचा कुछ नहीं। भगवान खूब प्रसन्न हो जाए, अपार कृपा करने के लिए भंडार खोले तो वे सत्संग देते हैं। भगवान के खजाने का बहुमूल्य रत्न है सत्संग। सत्संग एक बहुत बड़ा चमत्कार भी है। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा आश्चर्य संसार में दूसरा है ही नहीं। क्या चमत्कार है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से ये जीव भगवान से विमुख रहता है, ध्यान नहीं। सत्संग में जाते ही इसको होश आता, अरे मैं भगवान का हूं, मेरा संसार से थोड़ा ही संबंध, मेरा तो भगवान से अनादिकाल सिद्ध संबंध। संसार से संबंध मैंने अपनी तरफ से झूठी कल्पना से बनाया है और भगवान के साथ संबंध मेरा बना बनाया है। यह तो मैंने बनाया है और वो भी मूर्खता से, और भगवान ने बनाया है, बनाया बनाया एकदम स्वतः से। अभी किसी आदमी का शरीर शांत हो जाए, किसी का भी शरीर शांत हो जाए, शरीर शांत होते ही संबंध विच्छेद है उसका। घर के कहे भेगिए काटो भूत भये कौ खाइए, घर वाले भी कहेंगे कि अरे क्या भूत बन जाएगा और खा जाएगा, उम्र भर बेचारा यहां कमाया है खिलाया है, मरते ही ले जाने की तैयारी करते हैं। अब इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध, ले जाओ जितना जल्दी हो सके। कई जगह तो देखा है रात में लोग ले जाते हैं, गंगा जी यमुना जी की यहां तो छूट है थोड़ी, या तो सूर्य की साक्षी में हो या गंगा जी की साक्षी में हो। गंगा जी की साक्षी और सूर्य की साक्षी दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर गंगा जी न हो वह सूर्य की साक्षी तक तो प्रतीक्षा करे, रात में ही ले जाते हैं रात में कि वे रात भर इस मुर्दे को रखेंगे, अड़ोस पड़ोस में भी नींद खराब होगी और सब भूखे प्यासे रहेंगे, मरने वाला तो मर गया, सुबह करोगे वो अभी कर दो, ठंडा समय है, दिन में तो फिर भयंकर गर्मी पड़ेगी, अभी ले, ऐसा देखा है सुना है बताया है, अभी ले जाओ, आराम रहेगा, अभी संस्कार करने में आराम रहेगा। एक आदमी का रात्रि में दाह संस्कार किया और मसाण के अंदर वृक्ष था, दाह संस्कार करने पर दो पक्षी ऊपर बैठे हुए बिचारे रात्रि में, वहां तक वो उनकी आंच पहुंची, घबरा गए, उड़ गए। वो व्यक्ति बाद में अपने घर वालों को दिखाई दिया और कहा कि मेरी सदगति होने वाली थी लेकिन आप लोगों ने मेरी दुर्गति कर दी, मुझे आपने रात्रि में जलाया, पक्षियों को पीड़ा हुई, उस पीड़ा के कारण से मेरी सदगति में बाधा पड़ी और मैं इधर उधर बहुत कष्ट पा रहा हूं, यदि आप दिन में मेरा दाह संस्कार करते तो इतना कष्ट नहीं पाता। घर के कहे बेगिए काडू भूत भये कौ खाइए, इतना स्वार्थ, इतना हमारा संबंध संसार है। और भगवान में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है, सनातन मेरा अंश है, सनातन मेरा स्वरूप है, ऐसे भगवान को तो हमने उपेक्षित कर रखा है, एक अलग ही कारखाने में डाल दिया है, मतलब ही नहीं भगवान से, संसार से मतलब है, परिवार हो, धन हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, संसार का रस मिलता रहे, और अंत में संसार हमको छिटका करके फेंक देता है। जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, ऐसे परमात्मा को एक क्षण में याद करवा दे वह केवल सत्संग है। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरे, सो काम हो और भोजन करना हो तो सो काम को छोड़ दो, पहले भोजन कर लो। शतम विहाय भोक्तव्य, और हजार काम है, स्नान करना है तो कि पहले स्नान कर लो, सहस्रम स्नानमाचरे, और लक्षम और लाख काम छोड़ करके दातव्य, लक्षम विहाय दातव्य, लाख काम है लेकिन दान देने का काम पड़े तो वहां लाख काम को छोड़कर दान देना चाहिए, लक्षम विहाय दातव्यम और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ काम को छोड़ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ये भगवान के स्मरण करने का केंद्र है सत्संग। सत्संग सेवधीर नृणाम, कितनी कितनी मनुष्य की गलत धारणाएं सत्संग में नष्ट होती है कह नहीं सकते। अच्छे अच्छे संत महापुरुषों के सत्संग में बहुत से लोगों ने कहा है कि हमारी ऐसी ऐसी शंकाएं थी, हम सोचते थे कि इन प्रश्नों का कहीं समाधान है क्या संसार में, परंतु जब हमको असली सत्संग मिला तो हमारा अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान दूर होता है उस समय अपने अंदर के ज्ञान का आनंद मिलता है। जैसे भीतर में लोभ नहीं होता तो धन खर्च करने का आनंद आता है। खर्च तो धन होता ही है, लेकिन लोभ होने से खर्च का आनंद नहीं आता। लोभ नहीं होता है फिर खर्च करने का आनंद और ही होता है। ऐसे ही किसी वस्तु की कामना नहीं होती और वस्तु मिलती है, उस वस्तु का सदुपयोग कुछ और ही ढंग से होता है। फबती वस्तु, अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए, उनके मन में संसार की गरज नहीं रहती थी तो संसार उनके पीछे दौड़ता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उनका सम्मान, अच्छा लगता है। नेताओं का सम्मान होता है अच्छा नहीं लगता है। एक्टरों का सम्मान होता है अच्छा नहीं लगता है। इतनी इतनी भीड़ उमड़ती थी बीकानेर में, एक एक्टर यहां खड़ा हुआ चुनाव में, इतनी भीड़ इकट्ठी होती महाराज जी के सामने। महाराज जी की तो भीड़ कुछ नहीं थी उनके सामने। अखबारों में पढ़ते थे कि जहां कहीं वो जाता गांव में तो कितने लोग उमड़ते थे उसके पीछे। आश्चर्य था, आश्चर्य। बुरा लगता है, वो बड़ाई बुरी लगती है। और महाराष्ट्र के प्रवचन में आते, अच्छे महापुरुषों के प्रवचन में लोग आते, अच्छे लगते हैं। तो सत्संग है वो भगवान की सबसे अमूल्य मणि है, रत्न है, खजाना है। सत्संग सेवधिर निर्णाम। भगवान ने जिस जिस पर प्रसन्नता की है, प्रसन्नता व्यक्त की है, उसको भगवान ने हृदय खोल के सत्संग दिया है। अर्जुन पर भगवान ने विशेष कृपा की तो क्या दिया, गीता सुनाई। गीता से बढ़कर आज क्या है। इसी प्रकार से उद्धव जी पर भगवान अपार कृपा बरसाने लगी तो क्या दिया, एकादश स्कंद में देख लो ज्ञान दिया उन्होंने। इसलिए बिल्कुल ठीक है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। उन भक्तों के नाम के अंतर्गत श्री नाबाजी महाराज कल सुखदेव ब्राह्मण के विषय में बताए, जिसकी कथा भागवत में भी आती है। सुखदेव ब्राह्मण भगवान के और संतों के आने पर इतना भगवान के प्रेम में डूब गया कि संतों का आदर करना भूल गए। आए हुए हैं, संतों का आदर करो, संत आए हैं। संत मेरे स्वरूप होते हैं, तब उसकी वृत्ति गई उधर। तो कपड़ा हाथ में ले लिया, नाचने लग गया पागलों की तरह से। ये कल कथा आपने सुन ली थी। आगे बताते, एक अंग नाम का राजा हुआ, अंग। ये ध्रुव जी के वंश में हुआ था, भागवत में भी इसकी कथा आती है। अंग राजा बड़ा अच्छा राजा था, धर्मात्मा पुरुष था। प्रजा का इसने खूब धर्म पूर्वक पालन किया, परंतु उसके सबसे बड़ी समस्या ये थी उसके कोई संतान नहीं थी। परंतु शुभ कर्म करता रहता था, दान पुण्य करना, यज्ञ याग आदि कराना, ये हरदम करता रहा। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ किया तो उसमें देवताओं को आहुति देवे, देवता आवे ही नहीं, यज्ञ की आहुति को स्वीकार करे ही नहीं। अच्छे ब्राह्मण होते थे, वो यज्ञ के अंदर आहुति देते तो आहुति ऊपर जाती तो उसको लेने के लिए देवता लोग आकर अपने अपना हिस्सा ले देते। ओम इंद्राय नमः, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, विश्वे देवाय स्वाहा। तो राजा ने कहा, ब्राह्मणों ने भी कहा, ब्राह्मणों ने कहा राजन तुम्हारे यहां आते ही नहीं है, देवता लोग आते नहीं, क्या बात है, क्या बताओ क्यों नहीं आते, मुझे क्या पता। ब्राह्मणों ने कहा कि इस जन्म में तो तुमने कोई अपराध किया नहीं, कोई पाप किया नहीं, इस जन्म में तुमने बहुत अच्छे सत्कर्म किए हैं, पिछले जन्म का कोई पाप है, तुम्हारे कोई लड़का नहीं है, इसलिए देवता नहीं आ रहे। देखो एक बात सदाई याद रखनी चाहिए, हमको जो इस जीवन में मिलता है वो इस जन्म का किया हुआ नहीं मिलता। बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं, विचलित यूं हो जाते हैं कि हमने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, जहां तक हमारी समझ थी हमने अच्छा काम किया, हो सका तो हमने किसी की भलाई की पर बुराई नहीं की, ये हमारे ही कहां ये ऐसा हो गया, हमारे घर में जवान बेटा मर गया, हमारे ये हो गया, हमारे शरीर में तकलीफ हो गई, हमने कभी किसी को कष्ट दिया नहीं, हमारे कैसे हो गया ये। अधिकांश आदमी यही सोचते हैं, रुपए में चौदह आना ऐसा कहे तो आश्चर्य नहीं है, दो आना इसलिए कि सत्संग में दो आना ही आते हैं। सत्संग करने वाले वे थोड़ा बहुत इस विषय को जानते हैं, उनमें भी सत्संग को जो लगन पूर्वक करते हैं उनके तो ये बात समझ में आती है, पर बिना लगन के ठीक है आगे आगे चलेंगे चलेंगे, उनके भी शंकाएं दूर नहीं होती। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े कवि लोग भी इसको ठीक नहीं जान पाते, वो भी नहीं कह सकते कि भी क्या है क्या नहीं है। अच्छे अच्छे संतों के शरीरों में तकलीफ होती तो लोग आश्चर्य करते कि भाई ये तो साक्षात परम तत्व को जानने वाले हैं, इनके तो सारे कर्म फल नष्ट हो गए, अब ये अब कौन से कर्म का फल भोग रहे हैं जी, इनके शरीर में बीमारी क्यों, इनके सामने ऐसी परिस्थिति क्यों। एक बहुत अच्छे संत थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, गृहस्थ में भी संत होते ही है, वही है, तो उनके खास अंतरंग सत्संग करने वाले लोगों ने पूछा कि आप इतने सत्कर्मी हैं और आपने ये भी बताया है कि मैं पिछले जन्म में भी सत्संग करता था, मैं एक राजा के यहां मंत्री था, फिर मैंने अपना मंत्री पद छोड़ करके भगवान में भजन करने का निश्चय किया। राजा ने भी मेरे पीछे राज्य छोड़ करके मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया और वो भी भजन करने लगा। मैंने उसको अपना चेला बना लिया था, इस कारण से उसके भजन में कमी रही तो उसका उद्धार करने का काम मेरे जिम्मे था। या तो गुरु बनना नहीं चाहिए, गुरु बने तो उसका उद्धार करना चाहिए। तो मैं उस समय गुरु बन गया। गुरु बन जाने से उसका उद्धार पूरा कर सका नहीं, ध्यान दिया नहीं। अब वो जब जब जिन जिन योनियों में भटकते 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 मानव शरीर में आया, तो फिर मैं भी मानव शरीर में आया। इतना आपको जन्म जन्मांतर का ज्ञान है, फिर आपके संतान क्यों नहीं है? तो उन संतों ने उत्तर दिया कि ऐसे प्रश्न करने नहीं चाहिए, कि नहीं हम खास आपके अपने इसलिए प्रश्न करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी ने किसी जन्म में अपने बच्चे को मार दिया था, जो अभी मेरी धर्म पत्नी है उसने किसी जन्म में बच्चे को मार दिया, उसके अपराध से इसके बच्चा नहीं होता है। तो किसी जन्म का कोई कर्म का फल होता है वो हमको यहाँ इस जन्म में मिलता है, पर मानव जीवन में जो मिलता है उसमें कल्याण में बाधा नहीं पड़ती, ऐसे कर्म फल मिलते हैं। चाहे कितना ही कष्ट आ जाए कल्याण में बाधा नहीं हो सकती, बीमारी आ जाए और आ जाए, सबसे ज्यादा तो मृत्यु का कष्ट माना जाता है। मृत्यु तो खैर सभी प्राणियों की होती है, पर मनुष्य को मृत्यु के समय में, सभी प्राणियों को होती मृत्यु के समय में दुख होता है, पर मनुष्य को कुछ ज्यादा होता है जो विवेक से काम नहीं लेता। ज्ञान को काम है, मरना तो है नहीं, मर ही रहे हैं, कोई आज नया थोड़ी मर रहे हैं। जो बराबर सत्संग की बातें सुनता है वो समझता है आज भी नई मृत्यु थोड़ी हो रही है, हो रही, रोज मर रहे थे, मर रहे, मर मर रहे। भगवान का स्मरण होना चाहिए। जो मृत्यु नजदीक आती है त्यों मनुष्य को घबराहट के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। तो राजा अंग ने कहा कि साहब मेरे तो कोई अपराध याद नहीं है, तो साहब इस जन्म के आपके कोई अपराध नहीं है, पिछले जन्म में आपके कोई अपराध हुए इस कारण से आपके संतान नहीं है, तो क्या करोगे साहब? संतान के लिए यज्ञ करो। तब उन्होंने संतान करने, संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुति दी। आहुति देने पर एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। उसके पात्र के अंदर खीर थी और वो दे दी कि भाई ये अपने रानी को दे दो। उसने वो रानी को दे दिया और समय पर बालक हुआ। राजा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सारी प्रजा में आनंद हो गया। धीरे धीरे वो बालक ज्यो ज्यो बड़ा होने लगा त्यों त्यों उसमें अपने अवगुण आने लगे। थोड़ा समझदार हुआ कि मैं तो राजपुत्र हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। वह राजा राजपुत्र के अभिमान में आकर लोगों के घरों में आग लगा देना, लड़ाई कर झगड़ा करना, बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देना, बड़ा अन्याय करने लगा। राजा के पास शिकायत आई। राजा ने सब ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि देखो मेरा पुत्र हो जाए हो गया, इसका मतलब ये थोड़े कि प्रजा में अन्याय करे, यदि अन्याय करता है तो मैं तो इसको दंड दूंगा। पर ब्राह्मणों ये बताओ कि इतना यज्ञ आपने किया और इतना मैंने जीवन में अच्छा कर्म किया, फिर ये बुरा लड़का कैसे हो गया? बुरा क्यों हो गया? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये वंशानुगत पाप है। एक तो कर्मानुगत पाप होता है, एक वंशानुगत पाप होता है। वंशानुगत क्या होता है कि आपकी जो धर्मपत्नी है, इस बच्चे की जो माँ है, वो मृत्यु की दोहिती है। मृत्यु की दोहिती है, इस कारण से जो मृत्यु का दोष होता है वो दोष इसकी संतानों में आता है। तो ये वंशानुगत पाप है, ये आपका पाप नहीं, ये वंशानुगत पाप है। आपने जब विवाह किया, आपका जब विवाह हुआ तो कुल का विचार करके नहीं किया, कुल का पूरा विचार करना चाहिए। आजकल तो कुल की बात कही जाती है, जाति की बात कही जाती है, तो तथा कथित बुद्धिजीवियों के मन में ये बात समझ में नहीं आती। कई कई ऐसे निर्णय आते हैं, अदालत के निर्णय भी ऐसे ही दुखदायी आते हैं। स्त्री को अपना पति चुनने का अधिकार है, और भी कई कई ऐसे शास्त्र विरुद्ध निर्णय आने से अधर्म बढ़ता है। तब अंग के समझ में आ गया कि ओहो, कुल का विचार किए बिना ये जो धार्मिक संबंध हम करते हैं, उसमें धार्मिक संबंध में विवाह तो सबसे ऊंचा काम है, और इसी में यदि मनमानी होगी, शास्त्र का अनुशासन नहीं होगा, कुल का अनुशासन नहीं होगा, लोक धर्म का अनुशासन नहीं होगा, तो वो उच्छृंखल संतानें होंगी। फिर लोग कहते हैं कि साहब, आजकल के बच्चे मानते नहीं है, आजकल का वातावरण दूषित है। बचपन में तो बहुत ज्यादा मोह रखते हैं बच्चे का, और उसकी हर बात को ऐसे स्वीकार करते हैं, बच्चा है मैं उसको समझाते नहीं, मोह ज्यादा है। जहां विजातीय विवाह होंगे, अधार्मिक विवाह होंगे, मन पसंद के विवाह होंगे, वहां की परंपरा, वहां के पारिवारिक परंपरा निश्चित रूप से प्रदूषित होगी, इसमें संदेह नहीं है। पहले तो उन दोनों का आकर्षण, पति पत्नी का आकर्षण, फिर उस बच्चे के अंदर अनुचित मोह बच्चे में भी होगा, उस वो संतान बिगड़ती 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 थोड़े दिनों में बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो राजा अंग के इतने अनुकूल धर्म में चलते हुए भी न तो पहले देवता राजी हुए उसके कर्म फल से, और फिर उसके ये पाप का फल ये मिला उसको, वेन जैसा लड़का हुआ। तो ऐसे संसार के वातावरण को देख करके राजा वेन ने विचार किया कि भाई, ये ऐसा परिवार मिलता है, ये भगवान क्यों देता है, क्या कृपा समझे? तो उसने ये कृपा समझी कि इससे तो वैराग्य पैदा होता है। संसार में वैराग्य पैदा करने के लिए संसार की जितनी प्रतिकूलता होगी, उतना ही वातावरण भगवान के लिए अनुकूल बनता है। प्रतिकूल वातावरण भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वथा अनुकूल हो जाता है। इसलिए राजा अंग ने विचार किया कि अब हम यहां राज्य में नहीं रहना, चुपचाप रात्रि में निकल गए। किस रास्ते से कहां गए कुछ पता नहीं चला, चले गए। मन में विचार किया उन्होंने, बड़ी कृपा हो गई भगवान की, बहुत बड़ी भारी कृपा हो गई। यानी राज्य छूटता है क्या, बेटे का मुंह छूटता है क्या, बस राजा अंग के मन में इसी बात को लेकर के जो भगवान की भक्ति हुई ना, कि भगवान जो हमारे साथ बर्ताव करते हैं वो कल्याण के लिए करते हैं, इस बात को जो नहीं समझते हैं वे तो भगवान को कोसते रहते हैं जीवन भर कि हमने तो अच्छा काम किया और फिर ये क्या किया, हमने तो अच्छा किया और ये क्या किया। परंतु वेन के अंदर भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता गया। भीष्म पितामह के रोम रोम में दर्द था यार, तिल जितनी रख जगह भी नहीं थी कि जहां बाढ़ने लगा, खून बह रहा था, तकलीफ हो रही थी। पितामह बिजवा भगवान वाह वाह बहुत अच्छा, पिछले जन्म का कोई पाप था सारा पाप धुप रहा है, हे भगवान अब ये दुकान तो उठने वाली है, अब दोबारा तो मेरा जन्म होगा नहीं, कहां कहां छिपा हुआ कोई मेरे कर्म का फल हो तो प्रभु बस लाओ चुकत करे, लाओ चुकत करे उसे। जितना दर्द हो, जितना उनको कष्ट होता था, उतने वो कहते वाह वाह बहुत अच्छा हुआ, ये एक और पाप निकला, ये पाप और निकला, एक जन्म का पाप और निकला, बड़ा अच्छा। राजा अंग ने राजपाट छोड़, मंत्री राजा पुत्र सब को छोड़ करके एकांत में जाकर निवास किया। कहां गए कुछ पता नहीं चला, सुबह लोग ढूंढने के लिए निकले पता ही नहीं चला उनका आगे। पूर्ण संसार से वैराग्य हो गया, भावुकता में नहीं। देखो एक बात है, कई लोग क्या करते हैं, घर छोड़ते हैं तो लड़ाई झगड़ा करके छोड़ते हैं, प्राय ऐसा ही होता है, पुत्र से नहीं बनी, स्त्री से नहीं बनी, भाई से नहीं बनी, वो तैश में आ जाते हैं। क्रोध में कभी घर नहीं छोड़ना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए पूर्ण शांति के साथ। वो वैराग्य नहीं होता है जो लड़ाई झगड़ा करके और घर छोड़ के चले जाते हैं, हम साधु बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम भजन करेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे, ठोकर खानी पड़ती है। सत्संग पूर्वक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, वहां उसका घर त्याग ठीक बैठ जाएगा। लेकिन जो किसी एक घटना विशेष के कारण, अर्थात लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने अपमान कर दिया, उसने दो बात सुना दी, एक संत मिले उन्होंने कहा कि मेरी भाभी ने मुझे बहुत ताना मारा तो मैंने वो घर बार छोड़ दिया, अब उसके बाद मेरे बड़ी मुश्किल हुई, वापिस जाऊं तो मुश्किल और ज्यादा होगा ऐसा, और नहीं जाऊं तो मैं, मेरे अंदर विवेक नहीं, कुछ नहीं, मैं करूं क्या। फिर मुझे संत मिल गए, संतों के पास रहा, समय निकाल लिया और फिर मैं अपनी लाइन पर आ गया। लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत घबराहट, अब करूं क्या, निकल तो गया घर से। संतों का जो जो प्रवचन सुना उन्होंने कहा कि घर निकलने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, मुझे यदि आत्मकल्याण करना था तो आत्मकल्याण करने के लिए तो भगवत गीता में कोई परिस्थिति तो बताई नहीं कि ऐसी परिस्थिति होगी तो कल्याण होगा। गीता जी का उन पर प्रभाव पड़ा, गीता जी की बातें सुनी संतों से तो उस पर प्रभाव पड़ा। अब अर्जुन तो युद्ध छोड़ रहा था, युद्ध में परमात्मा की प्राप्ति नहीं दिख रही थी, भगवान ने उसको युद्ध में परमात्मा के लिए भी करो। महाराज श्री ने एक बार बात कही, कई बार कही होगी, याद ये है कि जो अर्जुन युद्ध छोड़ करके कल्याण चाहता था उसको तो भगवान ने युद्ध में लगाया, और जो उद्धव अपने प्रश्नों में कभी कहा ही नहीं भगवान से कि मैं परिवार में नहीं रहना चाहता हूं। ये नहीं कहा भगवान से, इतना ही कहा प्रभु आप ही सात दिन के बाद अपनी लीला समेटोगे तो मुझे अपने साथ रखो, आप मुझे अपने साथ रखो। उसको कहा कि तू चला जावा अलकनंदा के किनारे बैठ करके भजन कर। अर्जुन ने कहा कि मैं ये युद्ध छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करना चाहता हूं। क्या नहीं तू यहां युद्ध कर। क्यों? क्योंकि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि शवशो पिता। तेरा जो अभी छोड़ना हो रहा है वो वैराग्य से थोड़ा ही, अभी तो इसको छोड़ना चाहता है वो तू मोह से छोड़ रहा है। मोह से तो मोह तो सुरक्षित रख लिया, अब तेरे को मुक्ति कैसे होगी? घर में भी रहता है तो मोह, युद्ध करता है तो मोह, और युद्ध को छोड़ना चाहता है तो भी मोह। तो मोह ही तो पल्ले पड़ा तेरे दोनों क्रियाओं में, कि मोह तेरा कल्याण कैसे होगा? बुद्धि मोह यसीव में, मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो रही है। गांडीवम संसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते न तु शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमती उच मे मन। मेरा मन भटक रहा है। युद्ध करने से ठीक हो जाएगा, युद्ध न करने से ठीक हो जाएगा क्या? ये भटकाव तो ज्ञान से, विचार से, विवेक से ठीक होगा। अर्जुन विवेक पूर्वक त्याग करना चाहिए। अंग राजा ने विवेक पूर्वक त्याग किया और फिर पता ही नहीं चला कि कहां गए, किस दिशा में गए, क्या हुआ। तो ऐसे अंग राजा की नाबाजी महाराज ने बड़ी बड़ी स्तुति कर ली। कानन जाए भजो रघुराई, माया और ढीठ नहीं आई, मन में करें वन में करें साधु की सेवा, साधु छोड़ मां नहीं नहीं देवा। कोविक साधु कयो निप पाई, कुटी दे मेरे घर नाई, कुटी सहित सर्वस देरा के पुनिता के सेवा अभिला के। संत मिले उसको जंगलों में, उनकी जाकर सेवा की। ऐसे ही बैठे थे तो अंगराजा ने जाकर सेवा की, तो राज संतों ने कहा कि भैया सेवा तो करता है पर मेरी न तो कुटी है न आश्रम है, कुछ नहीं है। तो कहा कि महाराज मैं तो महलों को छोड़ के आया हूं, इन कुटियाओं में थोड़े मुझे रहना है। साधु प्रसन्न कहो असवानी, मिली तो इंद्र सारंग पानी। जब तेरे अंदर इतना वैराग्य है तो वैराग्य तो भगवान का, देखो भगवान के अंदर छह चीज होती तब तो उनका नाम भगवान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म से यशस्य, जिसके अंदर पूरा धर्म हो, ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, लक्ष्मी हो। षडैते भगवत भगैति उच्यते, इन छह को भग बोलते हैं और भग जिसके पास होता है उसको भगवान बोलते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्य श्रिय है, ज्ञान हो, वैराग्य हो, यश हो, कीर्ति हो, लक्ष्मी हो, समग्र। तुम्हारे अंदर वैराग्य की बड़ी प्रबलता है। संत महात्माओं के यहां वैराग्य को ऊंचा स्थान दिया है, ज्ञान से भी ऊंचा वैराग्य। आजकल ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे पर वैराग्य नहीं मिलते। ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें करेंगे कोई एकदम शास्त्रों की गुत्थी को खोल देंगे, लेकिन हृदय के अंदर गुत्थी है अज्ञान की, उसको नहीं खोल पाते। महाराष्ट्र ने कहा कि हमारे जमाने में एक वेदांताचार्य संत थे, वेदांताचार्य वो परीक्षा देने आए थे। महाराज जी ने अपने ढंग की परीक्षा दी, उन्होंने वो वेदांताचार्य की परीक्षा देने आए और वो फेल हो गए परीक्षा में। फैल हो गए तो इतने रोए, इतने दुखी हो गए, हाय मैं तो फैल हो गया। महाराज जी ने कहा कि मेरे असर पड़ा कि वेदांत पढ़ना है जिसके अंदर सर जगत को बिल्कुल मिथ्या बताया है, स्वप्न के समान बताया है कि जैसे आदमी रात्रि में स्वप्न देखता है उसको जागने पर सब झूठा मालूम देता है, ऐसे ही ज्ञान होने के बाद ये संसार दिखता ही नहीं है उसको, और ढंग से दिखता है। ज्ञान होने के बाद ये पंडाल पंडाल नहीं दिखता, ऐसी बात नहीं है, पंडाल दिखेगा पर हम लोगों के समान नहीं दिखेगा। हम लोग तो इसके रूप को देखते हैं, इसको महत्व देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, ज्ञानी महात्मा को दिखेगा तो ऐसे ही, पर अंदर से देखा ये सब भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। जैसे कोई आदमी आकर के देखे कि भाई पंडाल में ये कितने का पंडाल हो सकता है, एक चांदनी है ये 1000 रुपए की है, ये 2000 रुपए की है, 3000 रुपए की, हाँ टोटल सामान साहब 50,000 का है, अभी एक नया पैसा लगा हुआ नहीं है, एक नया पैसा भी चिपका हुआ नहीं है, कहेंगे कि पंडाल की सब सामग्री कितने की, 50,000 रुपए की, लोहा बांस हो गया, हाँ साहब सब 50,000 रुपए की, अब पैसा तो है ही नहीं, उसकी दृष्टि क्या है, वो किस दृष्टि से देख रहा है, हम भी देखते हैं और वो भी देखता है, हमको तो वो कितने का हो जाता पता नहीं, वो कह साहब ये 50,000 से ज्यादा का नहीं है, 50,000 में हम ले लेते हैं, बोलो आकर के ठेका लगा लेगा, अपने हो गया तो 50 को पता नहीं, लाख का तो पता नहीं, 10-20 का पता नहीं। और जिस विषय में अब जैसे रद्दी है, रद्दी अखबार की रद्दी होती है, वो कहता है साहब आपकी इतनी रद्दी है हम 100 रुपया इसका दे देते हैं, छोटा दिमाग वाला सोचेगा कि इतने से कागज का 100 रुपया मिलता है, बहुत विचित्र बात है, पर वो 100 रुपये में रद्दी लेता है तो उसमें वो 20-25 रुपया आगे कमाएगा, उसको वो 100 रुपये में भी कमाई दिखती है, और हम लोगों को लगता है चलो 100 रुपया तो फोकट में दे रहा है, ये मूर्खता से दे रहा है, हमारे यहां से घर से कचरा निकला, तो दृष्टि अलग अलग है। ऐसे ही वेदांत पढ़ लिया और उसको जगत सब मिथ्या दिखाई दिया तो फिर ये पास हो गया तो क्या और फैल हो गया तो क्या, इसके ऊपर कोई इसका असर कैसे पड़ गया, इसका बहुत घबराहट। महाराज ने कहा मैंने सोचा कि वेदांत बहुत ऊंची पढ़ाई है और वास्तव में ऊंची है ही, मैंने भी पढ़ा है, महाराज ने कहा मैंने खूब पढ़ा है और कई विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया भी, परंतु जब तक वो पढ़ाई हमारे व्यवहार में काम नहीं आए तो वो पढ़ाई तो बोझिल है, बोझिल काम की नहीं। साथ में ये भी कहा कि जो नहीं पढ़ता है उसके एक ताप है कि मैं पढ़ा नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाला जो पढ़ा हुआ होता है उसके 7 संताप होते हैं, भूल नहीं जाऊं, किसी से हार नहीं जाऊं, शास्त्रार्थ में आगे रहूं और ऐसे रहूं वैसे रहूं, अभिमान जा रहा, ऐसे उसके 7 संताप होते हैं पढ़े लिखे आदमी के, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसके एक ही संताप है। मैं जानू बोल कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, चारों वेद ढंडोर केर अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने ही में काम। स्वयं ज्योति जी महाराज के लिए महाराज जी ने कहा कि वो कहते थे बस काम तो इतना ही है, हम तो फालतू साधु मोड़ा हो गए, हम तो फालतू ही साधु मोड़ा हो गए, बोलते थे ऐसे, काम तो इतना ही था। महाराज जी ने कहा कि हमने उनके दर्शन किए, ऋषिकेश में झाड़ियों में रहते थे, सेठ जी ने अपने जीवन में जीते जी किसी महापुरुष की प्रशंसा की है तो एक स्वयं ज्योति जी महाराज की, बड़े वृद्ध बूढ़े हो गए थे, झाड़ियों में रहते थे, सेठ जी ने अपने प्रवचन में कहा कि ऐसे वृद्ध महात्मा की सेवा करके कोई जीवन मुक्त महात्मा की सेवा का फल ले सकता है तो ले सकता है। तब फिर कई भक्त लोग हैं उनको स्वयं ज्योति जी महाराज को चुरू ले गए। खूब सेवा की सत्संगी लोगों ने उनकी, हर प्रकार की सेवा की, उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, कपड़े खराब हो जाते थे, सब बहुत आदर से सेवा की। और फिर बाद में वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया, वहां उनके ऊपर शिव मंदिर बनाया चुरू में, शिव मंदिर को देखा भी है। जीते जी एक स्वयं ज्योति जी महाराज के लिए सेठ जी ने कहा, ये जीवन मुक्त महात्मा है। महाराज जी ने कहा, मैंने मेरे मुख से और किसी को जीवन मुक्त महात्मा शब्द सेठ जी ने कहा मुझे तो याद आया, एक स्वयं ज्योति जी महाराज के लिए कहा। उन्होंने कहा, काम तो इतना ही था, इतना ही, हम तो यही साधु मोड़ा हो गए। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग उसको वास्तव में हर प्राणी को असली राह दिखाता है, सच्ची राह दिखाता है। सत्संग हमको हमारे ही नेत्रों से देखना सिखाता है और हमारे ही नेत्रों से चलना सिखाता है। इतना सत्संग सामर्थ्यवान बनाता है हम लोगों को। अपने आंख से देखो और अपने पैर से चल। वैकुंठ हूं मह अंग नृप साधु चरण रति की, विवाह भोग पार्षद सरि यद्यपि कृष्ण बहुदीन। आगे जाकर के अंग को वैकुंठ के अंदर भगवान ने पार्षद बनाया है, परम वैराग्यवान था इसके, और फिर संतों की सेवा की। इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ कि जिन संतों के पास गए थे उन संतों ने कहा कि राजन, मैं तेरे को ऐसा वरदान दूं कि तुझे रमा निवास मिल जाए, लक्ष्मी जी का निवास मिल जाए, तेरे को बड़ी सुविधा मिल जाए, भूपति कयोन असमोई आशा, तो ही तज चाहो न रमा निवासा। मैं तो सत्संग छोड़ करके लक्ष्मी जी का निवास भी नहीं चाहता महाराज, वो तो सब छोड़ करके आया हूं, मुझे तो सबसे बड़ी मेरे में दरिद्रता है तो वो सत्संग की दरिद्रता है। आजकल बाहर का धन तो खूब बढ़ रहा है पर सत्संग की दृष्टि से हम दरिद्री होते जा रहे हैं। जो सात प्रश्न किए हैं काकुसुंड जी से गरुड़ जी ने, उनमें पूछा है कि सबसे बड़ा सुख क्या है, कि सबसे बड़ा सुख है संत मिलन सम सुख जगन्नाई। संत मिलन के समान, सत्संग मिलने के समान कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई इससे ऊंची जगह ही नहीं। और दुख क्या है साहब? कि भाई पैसा नहीं होता, ये सबसे बड़ा दुख है, लिखा तो ऐसा ही है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। पर वो दरिद्रता किस बात की? महाराज जी ने अच्छी व्याख्या की कि सुख के लिए जब सत्संग बताया है तो दरिद्रता के लिए धन कैसे बताएंगे? वो यही बताएंगे, सत्संग नहीं मिलना ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। मनुष्य के पास दरिद्रता सत्संग नहीं मिले यही दुख है। कितना ही धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, सत्संग का सामर्थ्य नहीं, सत्संग का रस नहीं पिया है तो इन सब बातों का हमारे पर कोई यूं सुखदायी असर नहीं पड़ेगा। संसार का उपयोग कर नहीं सकते, धन का सुख नहीं मिल सकता, सत्संग से ही मिल सकता है, ऐसे मिल नहीं सकता। तो उस राजा ने यही कहा कि महाराज मुझे ये क्या चाहिए, मैं तो बहुत दरिद्री होकर आपके पास सत्संग के लिए आया हूं। नृपति कहो न मोहि आशा, तो ही तज कहो न रमा निवास। आपको छोड़कर के मुझे रमा निवास भी अच्छा नहीं लगता है, भीतर में पसंद नहीं। नहीं, संत बड़े द्रवित हो गए। आए निप कह लेन विमाना, साधु त्यागी सो किए न पयाना। देखो स्वर्ग से देवता लोग आए विमान लेकर कि चलो महाराज राजा मृग जी चलो चल, राजा अंग जी चलो हम आपको ले चलते हैं। कहा कि नहीं भाई सत्संग छोड़ के हम नहीं जाएंगे। साधु त्यागी सो किए न पयाना, पयान बोलते प्रस्थान को, मैं संतों को छोड़ करके कहां स्वर्ग में जाऊंगा। महाराज वहां बहुत सुख है, बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, संत जैसा आराम मिल ही नहीं सकता है। जहां आपको कुछ नहीं चाहिए कि स्थिति मिले वहां पर कितनी ऊंची बात बनती है। जाए न चाहे कबू कचू सुशान प्रतिष्ठा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, बहुत बड़ा ऊंचे पद पर है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी आके संतों से पूछते हैं महाराज कोई आज्ञा दे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान की मुश्किल हो जाती है संत से। दूजे कृष्ण मुरार, भगवान देवताओं को देवियों को बड़ी बड़ी शक्तियों को इनको कुछ नहीं देखते, पर एक भक्त भगवान की भक्ति करता है। फिर भगवान के भक्तों ने कहा कि नहीं अब आप वैकुंठ में बैठो, हम आपको अपने साथ ले चलते हैं, भगवान के धाम में ले चलते हैं। तो भाई आप सबकी आज्ञा है, आप भी चल रहे हो मैं भी चलू। ऐसे राजा अंग हुए अंग, कितने वैराग्य थे। इन भक्तों के चरित्रों से हमारे अंदर ये एक साहस होता है, साहस। एक बार किन्हीं महापुरुषों ने किन्हीं दूसरे महापुरुषों से पूछा कि आप जो ये जीवन में कसौटी लगाते हैं, कसौटी से हमारे तो बड़ा नुकसान होता है, क्यों कि आप इतनी कसौटी से देखना चाहते हैं, वो हमसे होती नहीं, प्रयत्न करने पर भी होती नहीं, क्या करें। तो उन संतों ने उत्तर दिया कि हम जो ये कसौटी की बात करते हैं, आप तो करे जाओ पीछे न सिर को, इसलिए कसौटी की बात कहते हैं। बाकी भक्तों के जीवन से हमको ये सोचना चाहिए कि बस ऐसे भक्त की कथा हमने सुनी है, ऐसे भक्त का वैराग्य हमने सुना है, इसका थोड़ा सा भी हमारे हृदय में प्रभाव होगा तो ये भक्त अपने आप ही हमको ले लेंगे। स्वामी जी महाराज ने एक बात बताई कि जैसे पोस्ट ऑफिस की डाक होती है, वो बड़े बड़े थैलों में डाल देते हैं और हमारा एक जरूरी कागज है, उस कागज के अब वो थैले के अंदर ऊपर लगा के सील लगा दी, कोई खोल नहीं सके। अब क्या करेंगे, हमारा एक आदमी वहां पर बैठा हुआ है खास रेलवे में, उसको कहें कि भाई देखो ये हमारा पोस्ट कार्ड है, ये आज इस थैले में डाल के कल ये दिल्ली पहुंच जाए। ऐसा अच्छा भाई देखो थैला तो सील में लग गए हैं, अब कैसे भी हो। तो वो क्या करता है, थैले के अंदर एक इतना सा छेद करता है, थोड़ा थोड़ा वो थैले को काट करके और आपका वो पोस्ट कार्ड है उसको गोल करके उसमें डाल देता है। अब जो और डाक है वो तो पूरी पूरी मुंह में उसको गोल करके डाल दिया, अब वो कागज पहुंचेंगे वैसे वो पहुंचेंगे। ऐसे ही हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं और सुनते ही हमारे मन में भाव आता है, हाँ हाँ ये संत का चरित्र, भक्त का चरित्र कितना अच्छा है। बस समझना चाहिए कि अब उस गोल छेद में हमारा ये भाव रूपी पोस्ट कार्ड है, वो भगवान के पास पहुंच गया, अपना तो काम बन गया। इतना बड़ा वो थैला और उसका मुंह खोले और उसमें जाए, अब अपने तो इतने से नहीं पार पड़े। बात एक ही, वो दिल्ली जाने वाला थैला है वो और कागजों के साथ में वो भी चला जाएगा, डाल तो दिए ही थैले में। ऐसे हम भक्त के चरित्र से भगवान के साथ, भक्त के साथ जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ो, हताश होने के लिए नहीं है कि भाई ये तो राजा अंग थे, इसलिए वैराग्य हो गया। कई कई लोग सोचते हैं कि किसी जन्म का कोई इनका संस्कार होगा तब ऐसा होता है। राजा अंक के लिए तो बताया कि पिछले जन्म का तो पाप है, इसका लड़का ही नहीं हुआ, ये कितना पापी रहा ये पिछले जन्म में, इसका लड़का ही नहीं। केवल इस जन्म की आध्यात्मिक संपत्ति है। तो मानव शरीर में आए हुए प्राणी को इन बातों पर विचार करना चाहिए कि ये जो समय हमारा केवल कल्याण करने का है, चाहे पिछले जन्म की हमारे पास संपत्ति हो चाहे न हो, ये जन्म तो हमारे अपने कल्याण के लिए पूर्ण रूप से मिला है, पिछले जन्म की संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ये राजा अंग का चरित्र हमारे सामने नाबाजी ने रखा। रामायण पाठ कब से है? 16 तारीख भादवावदी सातमी, भादवावदी सप्तमी को 16 तारीख से दिन में 12:15 बजे से गौशाला में संत सेवाराम जी महाराज की गौशाला, उनके नाम की गौशाला, उस गौशाला के अंदर पाठ है। या तो अपने जगह, सभी कह रहे जगह छोटी पड़ती है, तो ये जगह भी छोटी, दूसरा बस वगैरह भी आवे तो भी यहां दिक्कत हो जाए, वहां खूब जगह भी है लंबी चौड़ी, 12:15 बजे से वहां पाठ है। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा,
जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा,
हाँ जय जय सीतापते रामा।